भगवान बता रहे हैं कि ये छह चीजें हैं जिनको जीवात्मा आकर्षित यानी आकर्षण करता है। जीव भूता, जीव भूत स्थिति है जीव की, यद्यपि भगवान का अंश है लेकिन जीव भूत होने के कारण वो जो है इन छह इंद्रियों के साथ संघर्ष कर रहा है। छह इंद्रियां या पांच इंद्रियां कहते हैं, एक मन है तो कभी कभी छह इंद्रियां भी कहा जाता है। तो छह इंद्रियों के साथ में ये जीवात्मा संघर्ष करता है ना। और विषयान उपसेवते, विषयों का सेवन करता है ना। तो वास्तव में जीव भगवान का अंश होने के कारण भगवान का सेवक है, अंश का कार्य है अंशी की सेवा करना, तो कृष्ण की सेवा करना इसका कार्य है। लेकिन अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण ये जीव भगवान की सेवा को छोड़ देता है और इंद्रियों की सेवा करता है। तो यहाँ पर पांच इंद्रियों और एक मन छह, तो छह व्यक्तियों की सेवा में लगा हुआ है और ये शत्रु हैं। ये जो छह हैं मन और ये पांच इंद्रियां, ये क्या हैं? शत्रु हैं। और शत्रु की सेवा अगर आप करते हैं तो शत्रु आपको और तंग करेगा। तो ये जो पांच इंद्रियां हैं और ये जो मन है, ये कभी भी जीव के ऊपर प्रसन्न नहीं होते हैं कि तुमने इतनी सेवा करी। जितनी सेवा करो उतना ही अधिक ये लात मारते हैं और तकलीफ देते हैं। तो एक तरफ कृष्ण की सेवा है कि हम कृष्ण की सेवा करें, तो इन छह की सेवा नहीं करनी पड़ेगी। और कृष्ण की सेवा करेंगे तो कृष्ण का प्रेम प्राप्त होगा, कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्त होगी, सुरक्षा प्राप्त होगी और सब प्रकार की आवश्यकताएं पूरी होंगी, है ना। एक दिशा तो ये है। और दूसरी दिशा क्या है? कृष्ण की सेवा छोड़ दी तो यहाँ पांच इंद्रियां हैं और एक मन है, ये मिल करके छह के छह हमारे शत्रु हैं। ये शत्रु हमसे सेवा भी कराते हैं और हमें लातें भी मारते हैं। तो लातें खाता है ये जीव, है ना। तो इसमें भगवान ये वर्णन कर रहे हैं इन इस श्लोकों में कि शरीर जीव जो है जब भी छोड़ता है तो इन छह चीज़ों का अपने साथ लेता है, बाकी तो कुछ भी उसके साथ नहीं रहता, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। इन छह चीज़ों को अपने साथ में ये ले लेता है और अधिष्ठाय, और इनको जो है अधिष्ठान स्थापित करता है और विषयों का सेवन करता है। श्रोत्रम, जैसे श्रोत्र, तो श्रोत्रम का मतलब है इंद्रिय, जो श्रवण इंद्रिय है उसको ये ले जाता है जीव। तो शरीर के अंदर जो कान का गोलक है तो वो तो शरीर के अंदर ही रहता है, वो तो शरीर का हिस्सा है। कान की गोलक में जो इंद्रिय है, जो सुनने की इंद्रिय है ना, उसको ये ले जाता है। उसी प्रकार से चक्षु, चक्षु का मतलब है नेत्र का गोलक, तो नेत्र का गोलक तो नहीं लेके जाता है शरीर में, नेत्र का गोलक तो ज्यों का तो बना है, लेकिन जो नेत्र इंद्रिय है, जो देखने वाली इंद्रिय है, उसको ये ले जाता है। इसी प्रकार से स्पर्शनम, जो त्वचा है, तो त्वचा तो शरीर में रहती है लेकिन जो त्वचा इंद्रिय है, स्पर्श इंद्रिय है, ये निकाल लेता है, ले जाता है। घ्राणम, घ्राणम का मतलब नासिका, तो नासिका का जो गोलक है वो तो शरीर में ही रहता है, जीव क्या लेके जाता है? जो सूंघने की इंद्रिय है उसको लेके जाता है। अधिष्ठाय मनस्यायम, और इसी प्रकार से मन, तो पांच इंद्रिय और एक मन को जो है जिस शरीर को छोड़ता है वो शरीर से ये निकाल लेता है। और भगवान ने बताया था कि किस प्रकार से ये ले जाता है, वायुर गंधा निवासयात, जैसे कि वायु है वो गंध को ले जाता है। तो जब वायु ले जाता है गंध को, तो गंध एक स्थान से दूसरे स्थान में जाती है लेकिन उसमें समय लगता है, वायु जो है जब गंध को ले जाता है तो एकदम से नहीं लेके जाता, जैसे कि मैंने ये किताब उठाई तो पूरी की पूरी किताब एक स्थान से मैंने उठा ली और पूरी की पूरी किताब दूसरे स्थान में रख दी। लेकिन जो इंद्रियां हैं ये गंध के समान है, किसी भी स्थान में गंध होती है तो जब हवा लेके जाती है गंध को तो एकदम से गंध नहीं जाती है, धीरे धीरे गंध जाती है, गंध का कुछ हिस्सा चला जाता है, कुछ हिस्सा यहाँ रहता है, फिर कुछ हिस्सा जाता है। उसी प्रकार से जो इंद्रियां हैं ये गंध के समान है और जो जीवात्मा है ये वायु के समान है, तो दिखाई नहीं पड़ता। जैसे हवा है, न तो हवा दिखाई पड़ती है और न गंध दिखाई पड़ती है, लेकिन वायु जो है गंध को ले जाता है। उसी प्रकार से न तो जीवात्मा दिखाई पड़ता है और न इंद्रियां दिखाई पड़ती हैं, लेकिन जीवात्मा इंद्रियों को ले जाता है, है ना। और दूसरे शरीर में जैसी इंद्रियां, जो इंद्रियों के गोलक हैं उनमें वो स्थापित कर देता है। जैसे नेत्र इंद्रिय है तो नेत्र गोलक में ही वो स्थापित करता है जहाँ की वो देख पाएगा। उसी प्रकार से जो श्रोत्र इंद्रिय है उसको कान का जो गोलक है वहाँ पर स्थापित करता है जहाँ से ये देख पाता है। इसी प्रकार से जो रसना इंद्रिय है तो ये जिह्वा का गोलक है वहाँ स्थापित करता है। घ्राण इंद्रिय है तो नासिका का गोलक है उसमें स्थापित करता है। विषयान उपसेवित तो विषयों का उपसेवन करता है, विषयों का उपसेवन करता है ये सोच करके कि मैं सुखी होऊंगा, मुझे सुख मिलेगा, इस आशा से ये इंद्रियों का भोग करता है। लेकिन इंद्रियों के भोग से होता क्या है, सुख नहीं प्राप्त होता है। ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते शुभ जायते, विषयों का चिंतन करता है उसमें आसक्ति पैदा होती है, संगात संजायते कामः, आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, कामात क्रोधो भी जायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोधात भवति सम्मोहा, क्रोध से सम्मोहन होता है, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, सम्मोहन से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, स्मृति ध्वंसात बुद्धिनाशो, स्मरण शक्ति के भ्रमित होने से उसकी बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति, और बुद्धि के नाश होने से स्वयं भी गिर जाता है, कल्याण के पथ से ये नीचे गिर जाता है। तो इस प्रकार से ये पांच इंद्रियां, पांचों की पांचों इंद्रियां गिराने वाली हैं, जीव को गिराने वाली हैं, और मनुष्य की योनि में ये पांचों इंद्रियां विकसित होती हैं, इसलिए मनुष्य के लिए बहुत खतरा है। ये जो इंद्रियां हैं पांच में से एक इंद्रिय भी जो है जीव को कितने कष्ट में डालती है, कितना इसको दुख देती है, इसका उदाहरण दिया गया है शास्त्रों में। जैसे कि श्रोत्र इंद्रिय है, तो श्रोत्र इंद्रिय है कान की, तो जो हरिण होता है तो उसकी ये इंद्रिय बहुत विकसित होती है, सुनने की इंद्रिय बहुत विकसित होती है, और कहीं अगर संगीत होता है तो वो जो है उसमें बड़ा संवेदनशील होता है हिरण हरिण, और वो संगीत को सुनने का बहुत आदि आसक्त हो जाता है, और इतना आसक्त हो जाता है संगीत को सुनने में कि शिकारी बैठा हुआ है और संगीत बजा रहा है और वो आ जाता है सामने खड़ा हो जाता है और सुन रहा है संगीत, और उसी के सामने ही हरिण के सामने ही शिकारी जो है संगीत को बंद करता है और धनुष में बाण मार करके उसको जो है घायल कर देता है और हरिण जो है गिर जाता है। भाग सकता है, अपनी जान बचा सकता है, भाग सकता है, लेकिन एक आसक्ति उसकी जो संगीत है उसको सुनने में उसकी इतनी आसक्ति है कि सामने ही वो बाण मारता है और वो नहीं भाग सकता है। ये स्त्रोत्र इंद्रिय। उसी तो चक्षु इंद्रिय है तो देखने की इंद्रिय है, रूप, तो ये इंद्रिय किसकी विकसित होती है, पतंगा जो अग्नि में जाता है पतंगा, तो उसकी ये इंद्रिय विकसित होती है, एक इंद्रिय आँख को देखता है, आँख का रूप देखता है तो रूप को वो भोगना चाहता है कि मैं इसको भोगूं, तो अग्नि में वो जाता है। अब आप जाते हैं आँख के निकट तो जैसे ही आँच लगती तो आप दूर भागते हैं, लेकिन उसकी चेतना है वो इतनी ज़्यादा उसमें लिप्त हो गई है रूप में कि वो रूप को देखते हुए जाता है तो वो सीधे आग में जाता है। अब देखिए आग में तुरंत बहुत तेज़ी से आग में जाता है, जबकि आग इतनी गर्म है कि आप दूर से ही भागते हैं, तो वो जाता है आग में, क्योंकि इंद्रिय जो है उसकी इतनी ज़्यादा वो है कि उसकी बुद्धि नष्ट हो गई, नष्ट हो गई है। वही ध्याय तो विषयान विषय का ध्यान करता है, इस तरह से काम आसक्ति और स्मृति भ्रमित, इसमें इतनी अधिक स्मृति भ्रमित हो जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, आग में प्रवेश कर गया। तो एक इंद्रिय जो है उसको किस प्रकार से नष्ट कर देती है। इसी प्रकार से स्पर्शन, स्पर्शन इंद्रिय है, तो जो हाथी है स्पर्श इंद्रिय उसकी बहुत विकसित होती है। तो हथनी को जब देखता है तो वो जो है अपनी स्मरण शक्ति उसकी नष्ट हो जाती है। और हथनी को ऐसे सिखाया जाता है कि वो हाथी को जो है इस तरह से वो जो है भगाती है, वो हाथी पीछे पीछे आता है कि वो हाथी गड्ढे में गिर जाता है, और गड्ढे में गिर जाता है तो हमेशा के लिए वो जीवन भर कैद हो जाए, कैद में हो जाता है। और हाथी भी गड्ढे में ऐसे नहीं गिरता क्योंकि उसके चार पैर होते हैं, एक पैर अगर मान लीजिए गड्ढे की तरफ जा रहा है तो तीन पैर तो उसके जमीन में है, तो वो अपने को जो है खींच सकता है, जमीन में वापस आ सकता है। लेकिन उसकी स्मरण शक्ति इस प्रकार से नष्ट हो जाती है, बुद्धि इस प्रकार से नष्ट हो जाती है कि चारों के चारों पैरों को जो है वो गड्ढे के अंदर डाल देता है और जीवन भर के लिए कैद बन जाता है। स्पर्शनम रसनम, रसना इंद्रिय है, मछली की जो रसना इंद्रिय है वो बड़ी विकसित होती है, बहुत विकसित होती है, तो उसकी खाने की बड़ी इच्छा होती है। तो जो मछुआरा होता है वो कांटे में कुछ कीड़ा लगा देता है या हटा लगा देता है, और जब मछली देखती है कि ये खाने की चीज़ है तो खाते तो हम भी हैं, लेकिन मछली में इतनी अधिक खाने की जो लालसा होती है उसकी स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, और इतनी कस के वो उसको खाती है कि जो कांटा है वो उसके मुंह के आर पार हो जाता है, इतनी कस के, क्योंकि इंद्रिय उसकी इतनी विकसित है, स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, और वो फिर जीवन से हाथ धो बैठती है ना। तो ये है रसना। घ्राणम, घ्राण इंद्रिय भ्रमर की, जो भ्रमर होता है तो उसकी सूंघने की जो शक्ति वो बड़ी विकसित होती है। तो जब वो कमल में बैठता है तो कमल का तो वो पराग लेता है या रस लेता है, लेकिन शाम को जब सूर्यास्त हो जाता है तो कमल क्या होता है, अपने आप बंद होता है। ऐसी जो है सेटिंग है कमल में कि सूर्यास्त जैसे होता है तो कमल बंद हो जाता है, और कमल जब बंद हो जाता है तो उसकी जो सुगंध है वो बहुत तीव्र होती है, क्योंकि अब बाहर की हवा तो है नहीं जो कि सुगंध को ले जाए, तो सुगंध कमल के अंदर जो है बंद हो जाती है, तो बड़ी तीव्र सुगंध मिलती है भ्रमर को। तो भ्रमर उस सुगंध में इतना आसक्त हो जाता है कि रात में जो हाथी हैं वो सरोवर में जाते हैं, प्रवेश करते हैं और कमल के फूल खाते हैं, तो कमल का फूल बंद है और भ्रमर बंद है उसके अंदर, और जब हाथी कमल का फूल तोड़ता है, मुंह में डालता है, तो भ्रमर को तो बहुत समय मिल जाता है कि वो कमल को जो है काट करके और अपनी जान बचा सकता है। ये कमल के जो पत्ते हैं, कमल के पंखुड़ियाँ हैं, वो तो इतनी कोमल हैं, भ्रमर तो लकड़ी में भी छेद कर देता है, लेकिन कमल की पंखुड़ियों को छेद नहीं कर सकता, क्योंकि सूंघने की जो इंद्रिय है उसकी इतनी विकसित है कि उसकी स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, और वो जो है निकलता नहीं है कमल के फूल से और हाथी के मुँह में जा करके मर जाता है। इस प्रकार से जो पांच इंद्रियां हैं, तो पांच इंद्रियों में से कोई भी एक इंद्रिय, किसी भी एक इंद्रिय के साथ मन होता है तो वो उसकी बुद्धि का हरण कर लेती है, तो एक इंद्रिय भी जो है व्यक्ति का विनाश कर देती है। और मनुष्य मनुष्य के शरीर में पांचों की पांचों इंद्रियां विकसित हैं, तो कितना खतरा है मनुष्य जीवन में, कितना खतरा है ना। तो भगवान जी बता रहे हैं कि जो मन है और पांच इंद्रियां हैं ये जो है हमारे बहुत बड़े शत्रु हैं, अगर इनको हम कृष्ण की सेवा में नहीं लगाते हैं तो ये हमारे बहुत बड़े शत्रु हैं, हम इनको कृष्ण की सेवा में लगाते हैं तो ये हमारे सबसे बड़े मित्र बन जाएंगे। तो इनको हमें कृष्ण की सेवा में लगाना है, और जो भी विषय हम प्रदान करते हैं वो कृष्ण से संबंधित हो, जैसे स्तोत्रम तो सुनना है, आपको सुनना है तो भगवान का गुणगान सुनिए। आजकल टेक्नोलॉजी में कितनी सुविधा है कि आप प्रवचन सुन सकते हैं, दस दिन पहले के प्रवचन भी सुन सकते हैं, दस साल पहले के प्रवचन भी सुन सकते हैं। तो इस प्रकार की जो इंद्रियां हैं इनको आप जो है भगवान का अगर विषय देते हैं तो भगवान के विषय से इंद्रियां शुद्ध होंगी और मन शुद्ध होगा। इस तरह से हम फिर हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी और हम भगवान के धाम में वापस जा सकते हैं। तो ये जो है एक बहुत बड़ा हमारे लिए खतरा भी है और बहुत बड़ा सुरक्षा भी है। सुरक्षा है अगर किसी दिशा में अगर इनको हम मोड़ते हैं अपनी इंद्रियों मन को तो बहुत सुरक्षा है, सीधी दिशा प्राप्त होती है वैकुंठ जाने की। और अगर इनको जो है हम विषय जो विषय भोगों में लगाते हैं तो सीधे नरक की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से हमारे लिए दोनों दिशाएं हैं, अब जिस दिशा में हम चलना चाहें उस दिशा में हम चल सकते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज भगवद गीता जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधा पार्षदी ललिता विशाखा गोविंदा सीताराम कृष्ण हनुमान। Thank you.